समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं वैष्णवी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
Hello Vaishnavi, hello and good afternoon to all our listeners. You're tuned to Parikrama on 100.1 FM. I'm Abhishek Mukhopadhyay and with me today is my co-host Vaishnavi. And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business tributes and much more. So there's a lot to talk about, Vaishnavi. Mm-hmm. And all this over the next 30 minutes, we'll begin with the news headlines first.
गृह मंत्रालय की उच्चाधिकार प्राप्त समिति और लद्दाख के नेताओं के बीच नई दिल्ली में विभिन्न मुद्दों पर बातचीत जारी।
इंडिया मूव्स अप टू 9th पोजीशन ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया, कंटिन्यूज टू रैंक 3rd इन एनुअल फॉरेस्ट गेन।
भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पिछले 11 वर्ष में 35 गीगावाट से 5 गुना बढ़कर 197 गीगावाट से अधिक हुई।
इन द रन अप टू बिहार पोल्स, आरजेडी प्रॉमिसेस गवर्नमेंट जॉब्स टू जीविका दीदीज, बीजेपी कॉल्स इट अ हॉलो प्रॉमिस।
मौसम विभाग की तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तरी आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी।
एंड ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा कन्फर्ड द ऑनरी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इन इंडियन आर्मी। And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Govardhan Puja and Navy Commander Conference. And Vaishnavi, today our hearts are full and our spirits are high as we celebrate one of the most beautiful and meaningful festivals in the Hindu calendar, Govardhan Puja. And this day is not just about rituals and offerings. It's a celebration of faith, gratitude and the eternal bond between the divine and its devotees. Stay tuned and join me on a spiritual journey through Mathura, Vrindavan and beyond as we explore the traditions, stories and celebrations of Govardhan Puja across India.
अभिषेक, शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ये त्योहार कब और कैसे शुरू हुआ। भगवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में गोकुल के लोग अच्छी फसल सुनिश्चित करने के लिए हर साल देवराज इंद्र की पूजा करते थे। अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बुद्धिमान नन्हे कृष्ण ने इस अनुष्ठान पर सवाल उठाया। श्री कृष्ण ने ग्रामीणों से कहा कि उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो उन्हें सब कुछ प्रदान करता है, उपजाऊ मिट्टी, स्वच्छ पानी और पशुओं के लिए चारा। ये बात सुन देवराज इंद्र को अपमानजनक महसूस हुआ और उन्होंने क्रोधित होकर लोगों को दंडित करने के लिए मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। लेकिन कृष्ण की लीलाओं से कौन बच सकता है। उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान और अपनी छोटी उंगली में दिव्य शक्ति के साथ पूरे गोवर्धन पर्वत को एक छतरी की तरह उठा लिया और 7 दिन तक गोकुलवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया।
Yes, and this powerful moment is remembered today as a symbol of nature worship, humility and the triumph of devotion over ego. Especially in Uttar Pradesh, the celebrations have taken on a grand and devotional tone, particularly in the holy cities of Mathura and Vrindavan, where thousands of devotees have gathered to offer their prayers and gratitude. The streets of Vrindavan and Mathura are alive with the spirit of devotion today. Devotees from all over India have come to witness and participate in the Govardhan Puja celebrations, full of vibrant processions, soulful bhajans, and the grand offering known as Annakoot, where a mountain of food is presented to टू लॉर्ड कृष्णा।
अभिषेक, वृंदावन और मथुरा में वातावरण अभी के समय बहुत ही दिव्य महसूस होता है। मंदिरों में भजन कीर्तन चल रहे हैं, भक्तजन गोवर्धन नाथ की जयकारे लगा रहे हैं और हर तरफ रंग बिरंगी रंगोलियां सजी हुई हैं। वहीं नन्हे बच्चे भी छोटे कृष्ण राधा के वेश में तैयार हुई घूम रहे हैं। और अगर पूजा विधि विधान की बात करें तो मंदिर के पुजारी अन्नकूट महोत्सव की भी तैयारी कर रहे हैं, जहां भगवान कृष्ण को 56 प्रकार के व्यंजन भोग के रूप में अर्पित किए जाते हैं। ये भोग वैष्णव संप्रदाय के लोग भगवान के प्रेम और भक्ति में भजन गाते हुए बनाते हैं।
सो गोवर्धन पूजा इजंट जस्ट लिमिटेड टू मथुरा एंड वृंदावन वैष्णवी, अक्रॉस इंडिया पीपल सेलिब्रेटेड इन यूनिक एंड ब्यूटीफुल वेज। In Maharashtra, it coincides with Parva, where husbands gift saris and jewelry to their wives. In Gujarat and Rajasthan, farmers decorate their cattle and prepare special meals as a gesture of gratitude towards nature and livestock. In villages across North India, children build small hills out of cow dung and decorate them with flowers and diyas, a symbolic Govardhan Parvat, and offer prayers with great devotion.
आज जब हम गोवर्धन पूजा का उत्सव मना रहे हैं, तो आइए आपको कुछ गोवर्धन पूजा के गहरे संदेश पर विचार साझा करें। ये त्योहार हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत का प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। ये पर्वत हमें उपजाऊ मिट्टी, स्वच्छ पानी और पशुओं के लिए चारा भी प्रदान करता है। सदैव विनम्रता का अभ्यास करें, क्योंकि जैसा कि हमने पौराणिक कथा से जाना कि जब अहंकार हावी हो जाए तो देवताओं पर भी प्रश्न उठाए जा सकते हैं। और सदैव भगवान पर भरोसा रखें, क्योंकि कृष्ण हमें हमेशा से सिखाते हैं कि सच्चे विश्वास की हमेशा जीत होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आइए हम कृतज्ञता के साथ जिए, सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हर दिन को।
सो टू कंक्लूड आवर डिस्कशन टुडे हियर वैष्णवी, एज द सन सेट्स ऑन दिस ऑस्पिशियस डे, मे द लाइट ऑफ लॉर्ड कृष्णा गाइड योर पाथ एंड मे द ब्लेसिंग्स ऑफ गोवर्धन नाथ ब्रिंग पीस एंड अबंडेंस इनटू योर लाइव्स। विशिंग यू एंड योर फैमिली अ ब्लेस्ड एंड जॉयफुल गोवर्धन पूजा। एंड नाउ मूविंग ऑन, The Indian Navy is setting sail towards strategic excellence as the second edition of the Commanders Conference 2025 kicks off today in New Delhi. And over the next 3 days, the top brass of the Indian Navy will gather to chart the future course amid turbulent tides in the region. And with Operation Sindoor fresh on the horizon, this conference couldn't have come at a more crucial time.
युद्ध की तैयारी, उच्च परिचालन गति और समुद्री सतर्कता, यह वही भावना है जब हमारे नौसेना कमांडर आज की बहुआयामी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व और रक्षा विचारकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नौसेना कमांडरों को संबोधित करेंगे तथा विकसित भारत 2047 की रूपरेखा भी प्रस्तुत करेंगे।
With a sharp focus on the Indian Ocean region and the wider Indo-Pacific, the Navy is reinforcing its mantra, interoperability, jointness and combat capability, alongside the Indian Army, Air Force and Coast Guard. From safeguarding sea lanes to asserting India's maritime might, our Navy isn't just defending the waters, it's shaping the future.
नौसेना हमारे समुद्रों की मूक रक्षक, राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रतीक और अनुशासन तथा साहस की शक्ति है। लेकिन अभिषेक, जानते हैं कि नौसेना आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? नौसेना की प्राथमिक भूमिका किसी देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना है। संघर्ष या शांति के समय वे विशाल महासागरों में गश्त करते हैं, खतरों को दूर रखते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहे। विमानवाहक पोतों से लेकर पनडुब्बियों तक नौसेना सटीकता और रणनीति के साथ काम करती है।
And also, Vaishnavi, the Navy is also a lifeline during natural disasters, whether it's delivering relief after tsunamis or rescuing stranded civilians. Navy personnel are always among the first to respond. And let's not forget, global trade happens over the seas. The Navy protects vital shipping routes and ports, making sure food, fuel and supplies reach us safely.
नौसेना नवाचार को भी बढ़ावा देती है। उन्नत रडार से लेकर परमाणु प्रणोदन तक उनकी अत्याधुनिक तकनीक अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली नई सफलताओं का कारण बनती है। तो अगली बार जब आप क्षितिज पर दूर तक किसी विशाल जहाज को देखें, तो याद रखें कि वे सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये एक ढाल है, एक मददगार है और हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। सभी पूर्व और वर्तमान नौसेना कर्मियों को हम सलाम करते हैं।
जय हिंद।
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और उनसे जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। तो सबसे पहले चलते हैं
अयोध्या।
जी बिल्कुल।
Yes, and can you tell us more?
अयोध्या दीपावली महापर्व का चौथा महापर्व पर्व अन्नकूट है। रामनगरी अयोध्या में कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के पर्व पर आज अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है। 14 वर्ष वनवास के दौरान विषम परिस्थितियों में रहे भगवान राम के अयोध्या आगमन की खुशी में दीपावली मनाने के बाद 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर उन्हें तृप्त करने की प्राचीन परंपरा है। और विवरण हमारे अयोध्या संवाददाता तन्मय सोनी से।
14 वर्ष वनवास के दौरान विषम परिस्थितियों में रहे भगवान राम को आज 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर उन्हें तृप्त करने के लिए सुबह से ही सभी मंदिरों में 56 प्रकार के व्यंजन बनाए गए। प्रथम आरती के बाद भगवान को व्यंजनों का भोग लगाकर प्रसाद भक्तों में वितरित किया जा रहा है। अन्नकूट महोत्सव की धार्मिक क्रियाओं के बारे में बता रहे हैं झुनकी घाट के महंत श्री प्रभंजनानंद जी महाराज।
भगवान को प्रातः काल 3:30 बजे अभिषेक किया जाता है। वो 3.5 घंटे का अभिषेक होता है, मज्जन होता है, उसके पश्चात की वैदिक परंपरा से पूजन अर्चन होती है, उसके पश्चात भगवान को सजाया जाता है, उसके बाद उनके समक्ष हम 56 भोग का भोग लगा करके उनसे निवेदन करते हैं कि ये 56 भोग नहीं बल्कि इन 56 व्यंजनों में हमारे भाव छुपे हुए हैं, ठाकुर जी हमारे भाव को आप ग्रहण करें।
अन्नकूट महोत्सव में प्रसाद पाने के लिए देश विदेश के क्षेत्रों से आए श्रद्धालु पंक्ति भक्त देखे जा रहे हैं। इस अवसर पर राम मंदिर में दर्शनार्थियों की भारी भीड़ है। परिक्रमा के लिए अयोध्या से तन्मय सोनी।
Gujarati community across the world is celebrating New Year today, and in Gujarat, New Year is celebrated on the first day of Kartik month of Hindu calendar, Vikram Samvat, and on the occasion of New Year, which is popularly known as Vestu Varsh, Governor Acharya Devrat, Chief Minister Bhupendra Patel, Union Home Minister Amit Shah will exchange New Year greetings with the people. We have a report.
On this auspicious day, the state is immersed in a festive cheer following Diwali. The new year begins with a tradition of seeking divine blessings. From early morning, temples across the state are witnessing huge footfalls as people start their day with prayers for a year filled with peace and prosperity. The commercial heart of Gujarat is also observing the key ritual, that is Chopra Pujan. Traders and business houses are performing the ceremonial worship of their new account books, marking them with auspicious symbols of Shubh Labh to seek blessings of Goddess Lakshmi for financial success in the year ahead. It is beautiful social day also. People are visiting the residences of their near and dear ones to exchange heartfelt greetings of Nutan Varshabhinandan, that is Happy New Year, accompanied by the exchange of traditional sweets. Tomorrow the festive cycle continues with the observance of Bhai Dooj, celebrating the protective bond between brothers and sisters. For Parikrama, this is Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
और श्रोताओं अब जयपुर की ओर रुख करते हैं। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला आज से शुरू हो रहा है। 7 नवंबर तक चलने वाला इस मेले का आयोजन 3 चरणों में किया जा रहा है। इसके तहत पशु मेले के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक मेला प्रमुख रहेगा। एक रिपोर्ट।
तीर्थराज पुष्कर में आज से शुरू हो रहे पुष्कर मेले के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई है। पशुपालन विभाग की ओर से मेला कार्यालय बनाया गया है। मेले से पहले ही विभिन्न स्थानों से पशुपालकों का पशुओं के साथ पहुंचने का सिलसिला जारी है। बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक मेला मैदान में पशुओं की अटखेलियां कैमरों में कैद कर रहे हैं। 30 अक्टूबर को ध्वजारोहण के साथ मेले का औपचारिक उद्घाटन होगा। वहीं सांस्कृतिक मेले में इस बार कैमल और हॉर्स शो सहित कई रोचक गतिविधियां और पारंपरिक खेल प्रतियोगिताएं शामिल की गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर मेला क्षेत्र में 2000 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे। सालेहा गाजी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। भारत के लक्ष्य सेन फ्रेंच ओपन 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। कल खेले गए मुकाबले में आयरलैंड के नहद गुयेन ने लक्ष्य सेन को 21-7, 21-16 से हराया। हालांकि पिछले सप्ताह डेनमार्क ओपन में उन्होंने नहद को हराया था, लेकिन पेरिस में उन्होंने अनफोर्स्ड एरर और लय नहीं बनाने के कारण हार का सामना करना पड़ा। दोनों गेम में उनकी शुरुआत खराब रही और संघर्ष के बावजूद वे वापसी नहीं कर पाए।
Two-time Olympic medalist javelin thrower Neeraj Chopra has been conferred the honorary rank of Lieutenant Colonel in the Territorial Army. The piping ceremony was held in New Delhi today in the presence of Defence Minister Rajnath Singh and Army Chief General Upendra Dwivedi. And they officially promoted Chopra by placing his new rank insignia on his uniform. And interacting with Lieutenant Colonel Neeraj Chopra and his family members, Mr. Singh described him as an epitome of perseverance, patriotism and the Indian spirit of striving for excellence. The Defence Minister said Lieutenant Colonel Neeraj Chopra embodies the highest ideals of discipline, dedication and national pride, serving as an inspiration to generations within the sporting fraternity and the armed forces alike. And moving on, some news from the business world. The Bombay Stock Exchange BSE and the National Stock Exchange NSE were closed for trading today on account of Diwali, Bali Pratipada. Trading in the equity derivatives, securities, lending and borrowing and currency derivatives segments also remain halted today. And in the global crude oil market, Brent crude was trading around 1.5%, up at $62.22 per barrel. And WTI crude was also trading 1.6%, up at $58.16 per barrel in intraday trade.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
On 22nd of October 1900 was born Ashfaq Ullah Khan in Shahjahanpur, Uttar Pradesh. Growing up, Khan heard stories from his eldest brother about the bravery and Urdu poetry of Ram Prasad Bismil. When the 1922 Chaura Chauri incident prompted Gandhi to end the non-cooperation movement, Khan was one of the many youngsters left disappointed.
In the mid-1920s, Khan and Bismil went on to found the Hindustan Socialist Republican Association, HSRA, with the aim of winning freedom for the country through an armed revolution. Khan had a flair for Urdu poetry and wrote under the pseudonyms Varsi and Hasrat Shahjahanpuri.
He wrote at length about the British conspiracy in India.
Phoot dalkar shasan karne ki chaal ka hum par koi asar nahi hoga aur Hindustan azad hokar rahega. Your conspiracy to divide and rule India will not work. We will make Hindustan free. An armed struggle required finances. Thus, to arrange for the finances, Ram Prasad Bismil, Ashfaq Ullah Khan and nine other members of the group planned to carry out train robbery. On the 9th of August 1925, Kakori Express was going from Shahjahanpur to Lucknow.
The train was carrying money that had been collected at various railway stations and was to be deposited in Lucknow. Ram Prasad Bismil, Ashfaq Ullah Khan and other revolutionaries stopped the train and fled with the cash they found in it.
They were arrested within a month of the robbery. The trial for the case went on for about 18 months and ended in April 1927. Ashfaq Ullah Khan, Ram Prasad Bismil, Rajendra Lahiri, Roshan Singh were sentenced to death and the others were given life sentences.
At the age of 27, Ashfaq Ullah Khan was hanged in Faizabad jail. When asked about his last wish, he said,
Kuch arzu nahi hai. है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाक वतन कफन में.
A memorial grave was set up in his hometown of Shahjahanpur.
Vitthal Bhai Patel left for his heavenly abode on the 22nd of October 1933. An acclaimed leader and a humanist, Vitthal Bhai Patel was the elder brother of Sardar Vallabh Bhai Patel and a renowned freedom fighter.
Also on this day in 1947, Pakistan invaded Kashmir. When India got independence and was partitioned to create Pakistan in August 1947, Jammu and Kashmir was a princely state ruled by Hari Singh.
2 months after the independence, on October the 22nd, thousands of tribal mercenaries and Pakistan Army regulars invaded the Kashmir Valley, overrunning the outposts manned by the king's forces in Muzaffarabad and other places as they headed towards Srinagar, their ultimate target.
In this background of devastation, Hari Singh reached out to the Indian government in Delhi. He signed the instrument of accession, and the Indian troops started landing in Jammu and Kashmir on October the 27th. The Indian troops launched a counter-attack. By November the 8th, the Indian forces secured Srinagar, the seat of the princely state.
The pushback continued till mid-November, when the scale of war was reduced. The war continued with lower intensity till the end of 1948. The ceasefire agreement was officially signed in January 1949.
Yes, and we're also remembering Jivananda Das, who passed away on this day in 1954. He was an Indian poet, writer, novelist, and essayist in the Bengali language. Often called the Rupashi Banglar Kobi, that is, poet of beautiful Bengal, Das is the most well-known Bengali poet after Rabindranath Tagore and Kazi Nazrul Islam, although he was not well recognized during his lifetime.
रविंद्रनाथ टैगोर के बाद बंगाली कविता में आधुनिकता लाने वाले वे रूपसी बांग्लार कवि कहलाए, जिनकी रचनाएं जैसे झरा पालक, बनलता सेन, रूपसी बांग्ला, महापृथ्वी और श्रेष्ठ कविता ने मुक्त छंद और गंध गाद्य कवि काव्य की शैली स्थापित की। झरा पालक से शुरू कर बेला अबेला कलवेला तक आठ काव्य संग्रहों ने बंगाली चेतना को समृद्ध किया। जीवनानंद दास को 1953 में बनलता सेन के लिए रविंद्र स्मृति पुरस्कार और 1955 में मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
Yes, and Jeffrey Lynn Goldblum was born on this day in 1952. He is an American actor and musician. He has starred in some of the highest grossing films of all time, such as Jurassic Park in 1993 and Independence Day in 1996, as well as the sequels, and also Vaishnavi. Arsene Charles Ernest Wenger was born on this day in 1949. He is a French former football manager and player who is currently serving as FIFA's Chief of Global Football Development, and he was the manager of Arsenal from 1996 to 2018, where he was the longest serving and most successful in the club's history. His contribution to English football through changes to scouting players, training and diet regimens revitalized Arsenal and aided the globalization of the sport in the 21st century.
आज ही पुण्यतिथि है छत्तीसगढ़ के श्रमिक आंदोलन के जनक ठाकुर प्यारेलाल की सिंह की, जिन्होंने मजदूरों के अधिकारों के लिए ऐतिहासिक संघर्ष छोड़ा। उन्होंने तीन प्रमुख मजदूर आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिसमें 1920 की 37 दिनों की हड़ताल ने काम के घंटों को कम करवाया और 1945 में पूरे राज्य में छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ बनाकर बुनकरों की आय बढ़ाई। धनी यूनियन, विश्वकर्मा एसोसिएशन और तांबे के कारीगरों की संस्थाओं को भी मजबूत किया।
फ्रांस लिस्ट वाज बोर्न ऑन दिस डे इन 1811. He was a Hungarian composer, virtuoso pianist, conductor and teacher of the Romantic period. With a diverse body of work spanning over six decades, he is considered one of the most prolific and influential musicians of his era, and his piano work remains central to the repertoire today.
सुनते ही बॉलीवुड के एक ऐसे दमदार विलेन का चेहरा आंखों के सामने घूमता है, जिसने अपने अभिनय के दम पर वर्षों तक इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमा कर रखा था। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के अपने समय के सबसे स्टाइलिश और प्रभावशाली विलेन अजीत खान की। मोना डार्लिंग के साथ साथ उनका डायलॉग सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है भी बहुत मशहूर हुआ था। अक्सर फैंस के साथ साथ इंडस्ट्री के लोग भी उन्हें लायन कहकर पुकारते थे। हमेशा अपने अभिनय से लोगों का मनोरंजन करने वाले अजीत खान का जन्म 27 जनवरी 1922 में हुआ था और अभिनेता ने 22 अक्टूबर 1998 में हैदराबाद में अंतिम सांस ली, जिसके मुताबिक आज उनकी पुण्यतिथि है।
मोना डार्लिंग,
भगवान की दया और सरकार की मेहरबानी से करोड़ों रुपए कमाने का एक बहुत ही अच्छा मौका हाथ लगा है।
लेकिन एक बात मत भूलिए डीएसपी साहब, सारा शहर मुझे लाइन के नाम से जानता है।
लोमड़ी के मुंह से शराफत का राग अच्छा नहीं लगता। काम की बात कर, काम की बात।
अबे तनख्वाह से क्या होता है आजकल, अगर आदमी बीमार पड़ जाए तो तनख्वाह से डॉक्टर की फीस भी नहीं दे सकता।
ठीक ही सुना है, दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने का मजा ही कुछ और होता है।
जो कुछ स्कूल में सिखाया गया है वो याद है, जो कॉलेज में सिखाया गया है वो याद है, जो पुलिस में सिखाया गया है वो याद है, बचपन से जो बाबा ने सिखाया वो सब भूल गया।
पैसे का लालच तुम जैसे दलालों को होगा, जो मासूम खिलाड़ियों को दौलत की लालच से गुमराह करके उनकी जिंदगी और मौत को दांव पर लगाकर अपनी तिजोरियां भरते हैं।
मुझे अंदर से खबर मिली है कि इस साल के खत्म होते होते सरकार का रवैया इस कदर सख्त हो जाने वाला है कि कहीं काले धंधे को सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी।
आज जन्मदिन है बॉलीवुड के हास्य के बादशाह कादर खान का, जिन्होंने अपनी संवादबाजी और अभिनय से सिनेमा को हंसी के रंग भर दिए। 1973 में दाग से डेब्यू कर 300 से अधिक फिल्मों में काम किया, जहां उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ मिस्टर नटवरलाल, कुली, अग्निपथ जैसे हिट्स के संवाद भी लिखे। कादर खान के हर किरदार ने हमें जिंदगी जीने की एक नई सीख और एक नया नजरिया दिया। आइए सुनते हैं नसीब फिल्म का ये डायलॉग।
अरे जिंदगी तो खुदा की नेमत है, जो नहीं समझा उसकी जिंदगी पे लानत है। आधी से ज्यादा दुनिया गरीबी और भूख के लपेटे में लिपटी हुई है। कोई रो के उसे बता देता है और कोई हंस के छुपा देता है, मगर फिर भी खुदकुशी उसका हल नहीं है मेरे दोस्त।
यस, एंड कादर खान लाइक वैष्णवी वाज सेइंग वाज ऑफ कोर्स बोर्न ऑन दिस डे इन 2018। ही वाज एन एक्टर, स्क्रीन राइटर एंड फिल्म प्रोड्यूसर, एंड एज एन एक्टर ही अपीयर्ड इन ओवर 300 बॉलीवुड फिल्म्स एंड स्टार्टिंग ऑफ मेकिंग हिज एक्टिंग डेब्यू विद द फिल्म दाग इन 1973 स्टारिंग राजेश खन्ना एज अ प्रोसिक्यूटिंग अटर्नी। And he was a prolific actor and a screenwriter in Hindi cinema from the late 1970s to the late 1990s and wrote dialogues for 200 films. Born in Afghanistan, Khan graduated from Ismail Yusuf College, affiliated to Bombay University. Before entering the film industry in 1971, he was a professor of civil engineering in the M.H. Sabu Siddiq College of Engineering, Mumbai. Let's listen in to a dialogue of his from the movie Ghar Ho To Aisa.
मालूम नहीं मेरे को भगवान ने कौन सी मिट्टी का बनाया है। शादी करने के बाद बीवी की नौकरी कर रहा हूँ और मरने के बाद ये मेरा मरा हुआ बाप तस्वीर में से बोलता रहता है। क्या है
बीवी के सामने तुम हिलाने वाले, कहाँ जा रहा है?
बावर्ची खाने में खाना बनाने चलता है।
यस, एंड कादर खान वाज ऑफ कोर्स बोर्न ऑन दिस डे इन 1937। मूविंग ऑन
जी, आज जन्मदिन है एक ऐसे किसानों की मसीहा का जिन्होंने सहकारिता आंदोलन की नींव रखकर दूध क्रांति को जन्म दिया। हम याद कर रहे हैं त्रिभुवनदास कृषि भाई पटेल को, जिन्होंने गुजरात के आनंद में जन्मे। पटेल ने गुजरात विद्यापीठ से शिक्षा लिया और महात्मा गांधी व सरदार पटेल से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, जिसके कारण कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा।
Senior space scientist and Padma Bhushan awardee Dr. Eknath Chitnis passed away this morning in Pune at the age of 100. He made significant contributions to the establishment of ISRO. Dr. Chitnis was among the pioneering scientists who, along with Dr. Homi Bhabha, laid the foundation of India's space program. He played a key role in developing INSAT, the country's first communication satellite, and took the initiative in selecting locations from the Sriharikota and Thumba launch centers. His efforts beginning in the 1970s helped make television accessible across rural India by the 1990s. And Deputy Chief Minister Ajit Pawar, Congress leader Vijay Wadettiwar and several other dignitaries have expressed grief at his passing and paid their tributes to him.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए वैष्णवी और अभिषेक को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने का।
नमस्कार।